इंसानों के लिए रब का पैगाम है, ये खत है हम सब के नाम हमारे मालिक की तरफ से, हमारे खालिक की तरफ से। इस तरह करके पढ़ें इसको। और हमारा खालिक और मालिक कौन है, जब इस चीज को आप गौर करेंगे, जितनी आपके दिल में अल्लाह ताला की अजमत होगी ना, उतनी ही इस किताब की वैल्यू आपके दिल में होगी। अगर किसी ने देखना है कि उसके दिल में अल्लाह ताला की कितनी अजमत है, कितनी कदर है, कितनी वैल्यू है, तो देखें कि उसके दिल में इस कुरान का क्या मकाम है, वो कितना वक्त इस कुरान को देता है। मकाम को तो कहने को हम सभी कह देंगे बहुत बड़ा मकाम है जी, इसीलिए हमने सबसे ऊपर रखा हुआ है, हम इसकी तरफ पैर भी नहीं करते। क्या आपने उसको रखा हुआ है कि अगर आप उसको खोलें ही ना, और रमजान के रमजान खोलें, या कोई मर जाए तो तब खोलें, या नए घर में मूव हो तो तब खोलें, या कोई मुसीबत आ जाए, कोई वजीफा करना हो तो तब खोलें। ये अहमियत है बस कि अपने ही काम संवारने हैं तो तब ये खोल ली। ये तो इंसानियत के नाम खुला हुआ पैगाम है, ताकि इनको वॉर्न कर दिया जाए। लेकिन एक एक आयत इतनी खूबसूरत है, सुभान अल्लाह। अब देखें ये वॉर्न करने वाला है, और आप देखें कि पैगंबरों ने क्या सबसे पहले क्या काम किया, लोगों को पहले इंतजार किया था, लोगों हम तुम्हें बड़े अजाब से वॉर्न करते हैं। लोगों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो यही किया था ना, लोगों अगर मैं तुम्हें कहूं कि इस सफा के पीछे एक लश्कर खड़ा हुआ हमला करने वाला है तो तुम क्या कहोगे? उन्होंने सबने माना था कि हाँ आप सच्चे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उस आग से डराया जो आखिरत में, क्यों उनको फौरन जन्नत की खुशखबरियां क्यों नहीं देनी शुरू कर दी? इसलिए कि उनकी हालत वो नहीं थी कि खुशखबरियां उस वक्त खड़े होकर दी जाती, लोगों बड़ी खुशखबरी तुम्हारे लिए, तुम जो कर रहे हो ना बड़ा अच्छा कर रहे। जैसे हम चाहते हैं ना हर वक्त हमें बस खुशखबरियां मिलती जाए। नहीं नहीं नहीं, ये कोई डराने वाली बात ना करो। हालांकि आप देखें रसूल का काम इसीलिए बड़ा ही मुश्किल है कि वो बुराइयों से रोकते हैं, और ये बात लोगों को बहुत बुरी लगती है कि हमें इंतजार ना करो, बस खुशखबरियां देते रहो कि तो जो चल रहे हो चल रहे हो, बस ठीक है इसी रविश पे चलते रहो, और आखिरत में तो तुम्हारे लिए जन्नत ही है, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम, वेरी गुड। देखे ना आप, अगर किसी कौम की हालत इतनी बिगड़ी हुई है, उसके पास एक रसूल आता है तो वो इंतजार ही करेगा ना, तबशीर तो नहीं करेगा ना, वो आके इनको डराएगा ही कि डर जाओ लोगों क्या कर रहे हो। और आज भी हमारा हाल यही है कि हमें इंतजार की जरूरत है, लेकिन लोग क्या चाहते हैं कि हमें इंतजार नहीं किया जाए, बस बुशारतें सुनाई जाए कि आप तो मुसलमान है, ये आपके लिए क्या मसला, आप तो जो सीधे जन्नत में जाएंगे, देखें जन्नत में ये है ये है ये है। नहीं, पहले इंतजार होता है, उसके बाद तबशीर होती है, उसके बाद बशारतें मिलती हैं कि पहले इंसान अपनी रविश बदले, खौफे खुदा उसके अंदर आए, मैं किसको नाराज कर रहा हूं, ये इतना भयानक अंजाम होगा अगर मैं इसी रास्ते पे चलती रही। फिर उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जब जिंदगी बदलती है तो फिर बशारतें भी मिली, कि सहाबा कराम को क्या मिली नहीं, जन्नत की बशारतें दुनिया में मिली उनको, और दुनिया की भी कामयाबियों की बशारतें मिली, आखरत की भी कामयाबी की मिली। तो ये कुरान इसलिए नाजिल हुआ ताकि वार्निंग दे लोगों को, ताकि लोगों को बताए आखरत के अंजाम के बारे में। इससे पता चलता है कुरान है जो सबसे बड़ा वाजो नसीहत करने वाला है। अगर आपने किसी को नसीहत करनी हो तो कुरान के जरिए कीजिए, इसका मकसद ही है, इसीलिए आया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका भी यही था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीरें कर करके लोगों को नहीं बुलाते थे, बल्कि कुरान की आयात सुनाते थे। तो हम भी कहते हैं ना जी फलां है, क्या तरीका कार करें, किस तरह समझाएं, बच्चों को कैसे समझाएं, उसको कैसे समझाएं, फलाने को कैसे समझाएं, हस्बैंड को कैसे, ये कुरान है ना आपके पास, ये सुनाए। अब खैर उनको अब अरबी में तो समझ नहीं आता, तो चलो तर्जुमा ही सुना दें, एटलीस्ट जब ये कानों में पड़ेगा ना, तो जिस तरह से ये इंसान को हिला देता है ना, कोई और नसीहत कितनी भी आप तकरीरें कर लें, कुछ भी कर लें, वो फायदा नहीं देगी। या किससे सुना दें, उसका किस्सा सुना दिया, उसका सुना दिया, नहीं, कुरान की तरफ क्यों नहीं आते? कुरान और हदीस ये सबसे बड़े वाइज हैं, सबसे ज्यादा ये दिल पे असर करने वाले हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जब लोगों को हम दावा करते हैं तो हम उनको कुरान की तरफ बुलाते हैं, क्योंकि आप बस कुरान की तरफ बुला देना, बाकी कुरान का काम है, ये खुद अपना काम कर देता है, ये खुद जिंदगियों को बदल देता है, फिर किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। ये बड़ी बड़ी नसीहतें, बड़े बड़े लेक्चर्स, बड़ी बड़ी बात दवा तो हमें समझ भी नहीं आती हमने किस तरह से किसी को नसीहत करनी है, उल्टा ही कर देते हैं, बजाय उसको कि वो सीधे रास्ते पर आए वो तो और जिद में आ जाता है, अना उसकी जाग जाती है और वो और हठधर्मी के साथ वही काम करने लगता है। तो कुरान जो है इसके साथ लोगों को जोड़ देना, बहुत बहुत वो सारे काम करने लगेंगे जो हिदायत के रास्ते के। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि नमाज पढ़ो, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हिजाब लो, ये खुद उनको बताएगा। तो हमारा मकसद यही होना चाहिए, लोगों को कुरान से जोड़े, ताकि ये इंतजार करें अगर हम चाहते हैं कि चेंज आए, चेंज इसी के जरिए आ सकती है। और उस दौर में भी चेंज तो कुरान के जरिए आई ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनमें पहले से मौजूद थे, चेंज नहीं आई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कुड़ते थे इनके इन कामों के ऊपर, लेकिन इनको बदल नहीं सके थे जब तक अल्लाह का कलाम नहीं आ गया। अल्लाह ताला के कलाम ने जैसे दिलों पे असर किया कि उनकी काया ही पलट गई, वो क्या थे और क्या हो गए, रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़ू अन्हु हो गए, अल्लाह उनसे राजी हो गया और वो अल्लाह से राजी होने वाले हो गए। वो जो बुत परस्त थे, वो जो जहालत के अंधेरों में पड़े हुए थे, कहां से कहां पहुंच गए। तो अगर आज हम भी चाहते हैं हमारे माशरे संवर जाए, इस्लाह हो जाए, तो हमारा एक मिशन होना चाहिए बस, सब तकरीरें छोड़ें, सब चीजें छोड़ें, कुरान से लोगों को जोड़ दें, ये खुद इंतजार करेगा। और हम अपनी जिंदगियों को भी देख लें, जो लोग भी कुरान से जुड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कई लोगों ने दो कोर्स कर लिए, एक कोर्स पहले से कर लिया, बस देखिए आप जिंदगी में कितना बदलाव आया, कहां खड़े हुए थे पहले दिन, जो पहली दफा भी पढ़ रहे हैं वो भी देखें। ठीक है, हम ये नहीं कहते 100% कोई भी कि भाई हम पता नहीं क्या बन गए हैं क्या नहीं, लेकिन जिंदगी में चेंज तो आया ना। अगर आप जीरो पे खड़े हुए थे तो आज एक दो स्टेप तो आगे लिए हैं ना, और इंशाल्लाह चलते रहेंगे इस रास्ते पे तो ये धोता जाएगा हमारे दिलों को। जैसे कोई चीज जंग आलूद हो जाती है तो क्या चीज है जो उसको साफ करती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बता दिया, दिलों का जंग, ये कुरान दूर करता और मौत की याद, ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नुस्खा बता दी। अब हमारे तो इतने जंगालूत हैं कि ज़ाहिर टाइम लगेगा, कब से तो हम इस कुरान से दूर थे, तो ये लेकिन जैसे जैसे आप इसके साथ अपना सफर जारी रखेंगे, आप देखेंगे जंग धुलता ही जाएगा। और अल्लाह ताला से दुआ है कि जब हम इस दुनिया से रुखसत हों तो या अल्लाह हमारे दिल साफ और शफाफ हों और तेरी मोहब्बत से पूरों बस। तो इस सफर को कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि ये कुरान इंतजार करता रहेगा, और ये ऐसे तरीके से करता है, सुभान अल्लाह, क्योंकि अल्लाह का कलाम है ना, ऐसे तरीके से करता है कि इंसान को पता भी नहीं चलता उसकी दिल की दुनिया कब बदल गई, कब उसको उन सारी चीजों से नफरत भी हो गई जो कि पहले वो बड़े शौक से करता था, अब उन चीजों का दिल भी नहीं चाहता, अब उन कामों में पढ़ने को नहीं दिल करता, अब वो अजीब सी बातें लगती हैं, अब वो लोग अजीब लगने लगते हैं जो वो उन कामों को कर रहे हैं। तो ये किसने चेंज किया हमारा अंदर, इस कुरान ने, तो ये नजीर है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी जुबान से ये कुरान हम तक पहुंचा, वो नजीर है। तो लिहाजा फरमाया कि इस कुरान के जरिए, ये कुरान इसलिए ये हक है, एक तो सबसे पहली बात हक है, यानी इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह का कलाम हक है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है कि कुरान हक है, वो पता है ये कुरान जो पढ़ेगा ना खुद उसको समझ आ जाएगी ये हक है, खुद समझ आएगी, खुद उसका दिल गवाही देगा ये अल्लाह का कलाम है, इंसान का नहीं है। अल्लाह अकबर, और तेरे रब की तरफ से आया, तो रब का कलाम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम नहीं। अगर वाकई ये यकीन है कि ये रब का कलाम है, यकीन है, तो फिर बताएं कि रब के कलाम की हमारी जिंदगियों में कितनी अहमियत है, बोर तो नहीं हो जाते इससे, इसके इसको टाइम देने को बोझ तो नहीं समझते। इसके साथ वक्त लगाना अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और प्रेशियस टाइम समझते हैं कि नहीं? अगर वाकई इसको रब का कलाम समझते हैं तो फिर तो आपके दिल के अंदर इसकी बहुत बड़ी अहमियत होनी चाहिए। इसको सीने से लगा के रखें। फिर मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि किसी का वाकया, किसी ने बताया कि हर वक्त अपने साथ कुरान रखते हैं, जिधर जरा से भी दो मिनट मिल जाए ना फौरन कुरान खुला और पढ़ने लगे। जब हमारे लिए तो और भी आसान है, हम तो कुरान नहीं भी हो तो हमारे फोन में कुरान है। जरा दो मिनट कहीं पे डॉक्टर्स ऑफिस में अपॉइंटमेंट के लिए बैठे हैं, कभी घंटा भी लग जाता है, उससे ऊपर भी लग जाता है, इतनी देर बैठे इधर उधर देखते रहेंगे लेकिन ये नहीं करते चलो कुरान खोल के दो चार आयतें तो पढ़ लें। वो ये नहीं कि पूरे पूरे सिपारे ही आपने कभी बैठना है आराम से तो फिर ही पढ़ेंगे, नहीं, अपनी जिंदगी के हर लम्हे को कीमती बना लीजिए, हर लम्हे को खूबसूरत बना लीजिए। आप सफर कर रहे हैं गाड़ी में, कुरान खोल लें, फजूल बातें इधर। थोड़ी देर बंदा लंबे लॉन्ग ड्राइव पे या किसी लंबे सफर पे जाता है तो बहुत टाइम होता है, जहाज में आप जा रहे हो तो कितना टाइम होता है, उसमें मूवीज लगा के बैठ जाएंगे, बेकार की बातें इधर से उधर देखते रहेंगे। क्यों नहीं हम कुरान साथ रखते कि हम कुरान खोल लें, ये हमारा साथी बन जाए। जिसने इसको इस दुनिया में साथी बना लिया ना, साथी कौन होता है? जिसका साथ रहे, सुबह उठे तो कुरान, रात को सोने लगे तो कुरान। देखिए ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ के ही सोते थे ना। नमाज में जितना याद है उतना कुरान, फिर और भी छोटे छोटे जो चंक्स हैं दिन के उनमें कुरान, ठीक है, जितना आपको याद है। मिसाल के तौर पर आपको 30वां पारा याद है, खाना बनाते हुए 30वें पारे की तिलावत शुरू कर दें। इस तरह से करके अपने टाइम में कुरान को ऐड करें, यकीन जाने आपके ये सारे लम्हे इतने खूबसूरत हो जाएंगे, इसका अंदाजा है इनकी कदर कीमत आखिरत में पता चलेगी। तो ये इसलिए आया कि शायद वो हिदायत पा जाए, रहनुमाई के लिए आया। तो रहनुमाई पाने के लिए बैठना है, इसके लिए इसका मतलब हम अपने दिल को पहले साफ कर लें, अपने दिल को साफ करके बैठें और ये सोच के बैठें कि मैंने इससे रहनुमाई लेनी है, ये नहीं कि मेरा दिमाग मुझे गाइड करेगा कि किस तरह चलना है, मुझे ज्यादा पता है कैसे चलना है, ठीक है।